Recording in progress.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدِه، قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. تو سورہ انعام کی تفسیر ہم پڑھتے ہیں اس والی کلاس میں، درس قرآن کی جو ہماری کلاس ہے اس میں آیات نمبر 90 سورہ انعام کی سے لے کے 94 تک کے ہمارے مسائل پڑھیں گے. تو پیج نمبر 396 پر ہم پہنچ چکے تھے، یا اس سے پہلے تک ہم نے مکمل کیا تھا کل کی کلاس میں. تو اس کے آگے پڑھتے ہیں کہ جو دوسری آیت ہے، یعنی آیت نمبر 91، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ، کہ نہیں قدر کری ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی جیسے اللہ تعالیٰ کی قدر کرنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے، ایک تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نا، بات سن کر کے دو معنی نکالے جا سکتے ہیں، یا پڑھ کر کے تو اور بھی دو معنی نکالے جا سکتے ہیں، سننے سے تھوڑا سا اور بات کلیئر بھی ہو جاتی ہے کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے قدر تو کری اللہ تعالیٰ کی، لیکن اتنی نہیں کری جتنی کرنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے، یا اس کا ایک معنی کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی قدر کرنی چاہیے تھی، حق قدر ہی اللہ تعالیٰ کا حق تھا کہ اس کی قدر کی جائے، ما قدر اللہ، انہوں نے قدر نہیں کری. اللہ تعالیٰ کا حق تھا کہ اس کی قدر کی جائے، انہوں نے قدر نہیں کری. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر دونوں مفہوم ہو بھی سکتے ہیں، لیکن جہاں پہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی قدر کرنی چاہیے تھی اتنی قدر نہیں کری کنہوں نے، کافروں نے، ہے نا، کیونکہ یہاں پر تو کافروں کی بات ہو رہی ہے نا، کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وہدی. ٹھیک ہے، یہ تو کافروں کی بات ہو رہی ہے نا، تو کافروں نے اللہ کی اتنی قدر نہیں کری جتنی کرنی چاہیے تھی، تو کیا مسلمانوں نے کر لی؟ کیا مسلمانوں نے اللہ کی اتنی قدر کر لی جتنی قدر کرنی چاہیے تھی؟ کیا کسی کے بس میں ہے کہ اللہ کی اتنی قدر کر لے کہ جتنی اللہ کی قدر ایکچولی ڈیو ہے؟ نہیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کسی کے لیے، یہ تو ہم میں سے کسی کے لیے ممکن نہیں، کافر ہو یا ایمان والا ہو، ایمان والا بھی ہو اس کے لیے بھی ممکن نہیں کہ اللہ کی اتنی قدر کر لے کہ جتنی کی قدر کرنی ڈیو تھی اللہ تعالیٰ کی، جتنا اللہ کا حق بنتا تھا. ٹھیک ہے، تو پھر یہ اس کے اندر تو کافر و مسلمان دونوں شامل ہو جائیں گے، لیکن بات تو یہاں پہ کافروں کی ہو رہی ہے، تو کافروں کی بات ہو رہی ہے اور مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. تو کافروں نے اللہ تعالیٰ کی بالکل بھی قدر نہیں کری. ٹھیک ہے نا، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ پارٹنرز بنا لیے، شریک بنا لیے، اور اللہ نے جس کو رسول بنا کے بھیجا تھا اس کا انکار کر دیا کہ نہیں، یہ تو رسول بنا کے بھیجا ہی نہیں. جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو عطا کیا تھا جسے، اور اپنا کلام نازل کیا، انہوں نے انکار کر دیا نہیں، نازل ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو یہ تو پھر بالکل ہی قدر نہ ہوئی نا، بالکل ہی قدر نہ ہوئی اللہ تعالیٰ کی، تو انہوں نے اللہ کی بالکل ہی قدر نہیں کری. بہرحال جو بھی اینڈ ریزلٹ ہے اس کے، بھائی اللہ تعالیٰ کی قدر جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتی، اور کافروں نے تو بالکل بھی نہیں کری، مسلمانوں نے بھی جو کری
जिन्होंने फिर गुनाह भी साथ साथ किए, अल्लाह ताला की नाफरमानी भी करी, तो उन्होंने कम कदर करी। जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी नहीं करी और पूरे ईमान लेकर के आए, कामिल ईमान लेकर आए, उन्होंने ज्यादा कदर करी अल्लाह ताला की। लेकिन 100% कदर तो किसी बंदे के, किसी मखलूक के बस में ही नहीं है। बहरहाल, तो ये इसकी जो है ना, फिर अब हम आरिफों मसाइल पढ़ रहे हैं। तो फरमाते हैं कि दूसरी आयत उन लोगों के जवाब में आई है कि जिन्होंने ये कह दिया था कि अल्लाह ताला ने कभी किसी बशर पर कोई किताब नाजिल ही नहीं की। ठीक है, कि मा अंजल अल्लाहु अला बशर मिन शय। ठीक है, तो ये किसी खास बशर की बात नहीं है, बल्कि बशरिन, पीछे भी बात हुई थी ना कि जब नकिरा, कोई इसम हालत नकिरा में आता है, यानी दो जबर, दो जेर या दो पेश, जिसको तनवीन भी कहते हैं अरबी में, तो अगर तनवीन के साथ कोई इसम आता है तो वो नकिरा होता है। दैट मीन्स वो जनरल, जनरलाइज होता है, वो डेफिनेट नहीं होता, स्पेसिफिक नहीं होता। तो इसका, इनके इस इन अल्फाज का मतलब क्या हुआ, किसी भी बशर के ऊपर नाजिल नहीं हुई, सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम की बात नहीं करी इन्होंने, किसी भी बशर। ठीक है, तो वही फरमा रहे हैं कि जिन्होंने ये कह दिया, तो ये किताबों और रसूलों का, उन्होंने ये कहा कि, मजीद ये कहा कि ये किताबों और रसूलों का कजिया सिरे से गलत है, यानी ये कोई 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 है ही नहीं है कोई ना, जैसे आजकल सो कॉल्ड मॉडर्न एथियस्ट जो बात करते हैं, वही बात उन्होंने 1400 साल पहले भी यही करी, ये तो कुछ है ही नहीं, बस हाँ ठीक है अल्लाह है, कुछ कोई बनाने वाला है, कुछ कोई जो है ना वो करता है, निजाम विजाम सब है, जब भी तो हमने बैतुल्ला बना के रखा हुआ है, या जो है वो हमने ईसा अलैहिस्सलाम को जो है वो अल्लाह का बेटा करार दिया हुआ है, नाऊज बिल्ला, और किसी ने कहा उजैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया हुआ, यानी अल्लाह तो है, हम अल्लाह के होने का इनकार नहीं कर रहे, लेकिन ये कोई अहकाम, ये कोई ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, ये कोई बाकायदा शरीयत की उसूल, ये सब कुछ नहीं है, बस अपनी अपनी मर्जी, अपना दीन अपनी मर्जी, जैसे वो हम दीनदार लोग जो हैं वो उस फितने को, अल्हम्दुलिल्लाह वो फितना लगता है कि तकरीबन खत्म हो गया है, जाहिर से खत्म हो गया, बातन में तो खैर मौजूद है, छुपा हुआ तो मौजूद है, लेकिन वो तो एक और औरत मार्च वाला फितना शुरू हुआ था, औरत मार्च वाला बड़ा फितना जो शुरू हुआ था, जिसमें सड़कों पे परेड हो करके जो है वो मुगल आजाद बकरे होते थे वो लोग, तो उसमें उन्होंने एक बड़ा नारा क्या लगाया था, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, किसी को क्या राइट पर पहुंचता है कि मुझे जो है वो मेरे जिस्म के बारे में बताए। ठीक है, तो दीनदार लोग बहुत खिलाफ हो गए उनके, बहुत अच्छी बात है, खिलाफ होना भी चाहिए था। ठीक है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, लेकिन इससे भी बड़ा फितना क्या है, मेरा दीन मेरी मर्जी, मेरा दीन मेरी मर्जी, मैं जो जिस चीज को भी हराम कहूँ वो हराम है, जिसको हलाल कहूँ वो हलाल है, जिसको शरीयत कहूँ वो शरीयत है, जिसको ना कहूँ वो ना है। ठीक है, कौन कोई किसी को क्या हक पहुंचता है कि मुझे बताया कि दीन क्या है। ठीक है, तो ये मेरा दीन मेरी मर्जी, ये उसी वक्त होता है ना कि जब ये कह दिया जाए कि नहीं रसूल ही कोई नहीं है, कुरान ही कोई नहीं है, या इंटरप्रिटेशन जो है वो किसी दूसरे की, मैं नहीं मानूंगी, मैं नहीं मानूंगा किसी दूसरे के इंटरप्रिटेशन के कुरान और हदीस के अंदर क्या अहकाम आता है, बल्कि मैं खुद ही इंटरप्रेट करूंगी, मैं खुद ही फैसला करूंगी, क्यों, इसलिए कि मेरा दीन मेरी मर्जी। ठीक है, तो ये उन लोगों ने भी यही कहा, तो उस इसके कहने वाले अगर मक्का मुकरमा के बुत परस्त हैं, जैसे कि इब्ने कसीर रहमतुल्लाह ने फरमाया, तो मामला जाहिर है कि वो किसी किताब और नबी के कायल नहीं थे। ठीक है, तो इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह, ये बड़े मुफस्सिर कुरान गुजरे, तफसीर इब्ने कसीर बहुत मशहूर बड़ी तफसीरों में से है, लेकिन इनके पास कोई दलाइल थे, जो भी थे इनके पास दलाइल, हमने अभी उसकी तो स्टडी नहीं करी है, लेकिन उन्होंने अपनी दलाइल की बुनियाद पर कहा कि भाई ये जो बात कही थी ना, ये मक्का मुकरमा के मुशरिकीन ने कही। ठीक है, अल्लाह आलम क्या उनके दलाइल थे जिसकी बुनियाद पर उन्होंने मक्का मुकरमा के मुशरिकीन की तरफ इस कॉल की निस्बत की। ठीक है, ठीक है भाई, एक अहले इल्म ने अपने दलायल की बुनियाद पर ये बताया, लेकिन अगर यहूद हैं, जैसे कि दूसरे मुफस्सरीन ने इख्तियार फरमाया, भाई दूसरे मुफस्सरीन के पास भी इल्मी दलायल पहुंचे, उन्होंने अपनी इल्मी दलायल की बुनियाद पर फरमाया कि नहीं, इससे मुराद यहूद है। ठीक है, तो इल्मी दलाइल की बुनियाद पर इखलास के साथ जो भी बात करता है ना, इल्मी दलाइल की बुनियाद पर वो बात ठीक होती है। ठीक है, हो सकता है आप उससे एग्री ना करें, आप दूसरे वाले इल्मी दलाइल से एग्री करें, लेकिन आप बिल्कुल ही रद्द भी नहीं कर सकते कि नहीं नहीं वो गलत काम कर रहा है, उसकी नियत ही खराब है, उसका ये खराब है उसको। नहीं भाई, उन्होंने अपने काम करके बात करी है, तो ठीक है आप उससे एग्री ना करें बेशक। जैसे इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने बहुत सारी बातें करी जिससे हम एग्री नहीं करते, हमसे मुराद हमारे जो अहनाफ के उलमा है वो एग्री नहीं करते। ठीक है, तो बस ठीक है यार, आप जो हनफी फिका है उसको फॉलो कर लें, इमाम शाफी को बुरा भला करने की आपको कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो बस वही है। तो अब जो दूसरे मुफस्सरीन हैं उन्होंने कहा कि यहूद इसका मुखातब है, और आयत का सिलसिला कलाम बज़ाहिर इसकी तायिद में भी है, क्योंकि आगे जो आयत आ रही है वो उसकी तायिद बिल्कुल जाहिरी तौर पर भी कर रही है। तो फिर उनका ऐसा कहना, फिर उन्होंने ऐसी बात क्यों कही भाई, महज गुस्से और झुंझुलाहट का नतीजा था। ठीक है, यानी उन्होंने ऐसी बात आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो है ना, वो ऐसी बात कही थी जो खुद उनके भी मजहब के खिलाफ थी, ये बात उन्हें अपने मजहब के खिलाफ थी। ठीक है, तो इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने भी जो है ना गालिबन जो कहा ना कि मुशरिकीन मक्का ने ये बात कही, तो उसकी भी एक अकली दलील समझ में भी आती है आसानी से कि भाई यहूद ऐसी बात कैसे कह सकते हैं, यहूद ऐसी बात कैसे कह सकते हैं, जबकि वो तो खुद इस बात के कायल हैं और सारी दुनिया को बताते हैं कि भाई मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर तौरात अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई, तो वो ऐसी बात कैसे कह सकते हैं। ठीक है ना, हो सकता है इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह की यही दलील हो। ठीक है, लेकिन जो इमाम बगवी रहमतुल्लाह अलैह की एक रिवायत में है कि इसीलिए यहूद भी उस शख्स से नाराज हो गए कि जिसने ये बात कही थी, और इसी गलती की वजह से उसको मजहबी पेशवाई के ओहदे से हटा दिया था। ठीक है, यानी जो एक हदीस जो है इमाम बगवी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुंची, ठीक है, उन्होंने यह हदीस सुनी किसी से, किसी जाहिर मुहदिस से सुनी होगी, तो वो हदीस बताती है कि भाई कही तो एक यहूदी ने थी असल में। ठीक है, लेकिन वो जो उसने कही थी ना, तो उसकी उसको फिर सजा भुगतनी पड़ी, क्योंकि उसने ऐसी बेवकूफी की बात करी थी, ऐसी बेसरोपा किस्म की बात करी थी, तो इवन उसके जो दूसरे साथी थे ना यहूदी उलमा, उन्होंने जो है ना वो उसके ऊपर नाराजगी का इजहार किया था, और उसको जो है वो सजा दी थी कि भाई तुम अब मुक्तदा कहलाने के काबिल नहीं हो, उसको जो है वो उसकी पोस्ट से डिमोट कर दिया गया था। ठीक है, हो सकता है इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह के पास ये वाली हदीस ना पहुंची हो, या इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस के ऊपर किसी वजह से जो है वो एग्री ना किया हो, कि पता नहीं इस हदीस की रिवायत ज़यीफ है, या इस हदीस की जो है वो रिवायत इस काबिल नहीं है कि मैं इसकी बुनियाद पर तफसीर करूँ इस आयत की। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से तफसीरों के दरमियान थोड़ा बहुत इख्तलाफ नजर आ जाता है। ठीक है, लेकिन पीछे जो हमने जब तर्जुमा पढ़ रहे थे इन आयात का, तो एक और बात भी आपके सामने करी थी, वो जाहिर है वो फिर इस लेवल पे की बात नहीं थी, वो एक दूसरे लेवल की बात थी कि अल्लाह ताला जो है ना वो फिर काफिरों से ऐसे ब्लंडर्स करवाते हैं कि जिस ब्लंडर की वजह से उनका जो इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट होता है वो अल्लाह के नबी के सामने कमजोर पड़ जाता है। ठीक है, क्योंकि अल्लाह के नबी को इंटेलेक्चुअली तो अल्लाह ताला ने हर सूरत फतह अता फरमानी होती। ठीक है, तो अल्लाह ताला ऐसे काम करते हैं। अब हमारे लिए इसमें हिदायत क्या है, हमारे लिए हिदायत ये है कि हम भी इल्म हासिल करें, समझ हासिल करें, और इल्म का जो है ना वो मेहनत करें, आगे पहुंचाने का काम करें। अगला बंदा अगर हमारी बात मान ले तो भी फायदा है, और अगर नहीं माने तो भी फायदा है, अगर मान ले तो भी फायदा है, अगर नहीं माने तो भी फायदा है। इसलिए कि जो दलाइल की कामयाबी है वो तो आपको मिल ही जाएगी, अगर आपने मेहनत करके इल्म हासिल करके और फिर इल्म को आगे पहुंचाया है, तो दलाइल की कामयाबी तो आपको मिल ही जाएगी। वो कैसे मिल जाएगी, कि अल्लाह ताला जो है ना फिर आपके ओपोनेंट को शिकस्त दिलवा देगा। उससे कोई गलती करवा देंगे, उससे कोई गड़बड़ करवा देंगे, उससे कोई ब्लंडर करवा देंगे और आपका जो है वो काम कामयाब हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये वाला पार्ट जो है ना, ये अल्लाह पे छोड़ना चाहिए और अपना काम करना चाहिए, यानी इल्म हासिल करना और उसको आगे सही तरीके से दलाइल के साथ पहुंचाना। इस आयत में हक तआला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि जिन लोगों ने ये बेहुदा कलमा कहा कि अल्लाह ताला ने कोई चीज नाजिल नहीं करी, तो उन्होंने हक तआला को पहचानने की तरह नहीं पहचाना, ठीक है, वरना ये गुस्ताखाना कलिमा उनके मुंह से ना निकलता। यानी ये जो अहले किताब थे उन्होंने जो है ना वो अल्लाह ताला को वो मुकाम नहीं दिया, वही शिर्क किया अल्लाह ताला के साथ, तो उनको वैसा नहीं पहुंचाना जैसे वैसा नहीं पहचाना जैसे कि अल्लाह ताला को पहचानने का हक था कि भाई अल्लाह ताला तो वाहिद ला शरीक लहू, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों से जो मुतलक आसमानी किताबों का इनकार करते हैं ये कह दीजिए कि अगर बात यही है कि अल्लाह ताला ने किसी बशर पर कोई किताब नहीं भेजी, तो ये बतलाओ कि ये तौरात जिसको तुम भी मानते हो और इसी की वजह से कौम के चौधरी बने बैठे हो, ये किसने नाजिल की? ठीक है, अच्छा मजे की बात यह है कि सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है, कल बात हुई थी ना तौहीद क्या है, फोकस, ठीक है, वन फोकस तौहीद, वहदते मकसद, ठीक है, वहदते यानी मकसद की वहदत और जो मकसूद है उसकी वहदत, ये तौहीद है, ठीक है। अब दीनी इस्तेलाह में इसका मतलब क्या होता है, अल्लाह की तरफ, ठीक है, यानी ये नहीं कि अब मेरी वहदते मकसद ये है कि बस दुनिया में मैंने सबसे अमीर आदमी बन जाना है, अब मैं इसको अपना मकसद बना करके इसी के ऊपर फोकस हो करके अगर मेहनत करता रहूं सारी जिंदगी कि मैं सबसे अमीर आदमी बन जाऊं, तो ये तौहीद कहलाएगी? नहीं, राइट, लफ्जी एतबार से तो ये तौहीद कहला सकती है, लफ्जी एतबार से, लेकिन दीनी इस्तिलाह के एतबार से ये तौहीद नहीं कहलाएगी। दीनी इस्तिलाह में तो तौहीद अल्लाह फोकस्ड ही कहलाएगी, ठीक है, तो लफ्जी तर्जुमा है ना वो अलग चीज होती है और इस्तलाही तर्जुमा जो है फिर वो उसको फिर फर्दर डिफाइन करता है, ठीक है। तो ये बात कल हुई थी कि तौहीद का ऑपोजिट क्या है, शिर्क है, और शिर्क क्या है, डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, यानी अब आप जो है ना वो मुंतशिर हैं, आप वहदत मकसद दुनियावी एतबार से तो चलो शायद आप कुछ कर भी लें, जैसे सबसे अमीर आदमी बनना है तो आप वहदत मकसद आपको दुनियावी एतबार से तो हासिल हो जाए, लेकिन नफसियाती एतबार से या रूहानी एतबार से तो यू आर कंप्लीटली स्कैटर्ड, कंप्लीटली डिस्ट्रैक्टेड, ठीक है। तो ये एक नेचुरल सी बात है, एक बहुत ही आसान समझने वाली बात है जिसको के आज के दौर में जो डिग्री याफ्ता डॉक्टर होते हैं और डिग्री याफ्ता साइकोलॉजिस्ट होते हैं या साइकेट्रिस्ट होते हैं या जो भी होते हैं, वो इस बात से इनकार नहीं करते कि जो भी डिस्ट्रैक्टेड होता है ना तो अब जो है ना वो कंफ्यूज्ड होता है, कंफ्यूज्ड, ठीक है। तो जाहिर है फिर जो मुशरिक होता है वो डिस्ट्रैक्टेड होता है, तो डिस्ट्रैक्टेड होता है तो वो कंफ्यूज होता है, जब कंफ्यूज होता है तो फिर वो अजीब अजीब बातें करता है ना, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो इस वजह से ये जो यहूद थे ये तो बरमला कहते थे ना कि अल्लाह की किताब मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई, लेकिन इवन जो ये मुशरिकीन मक्का थे जो कि अल्लाह की किताबों का और रसूलों का बजाहिर इनकार करते थे, लेकिन फिर भी इनकार भी नहीं करते थे, यानी करते भी थे और नहीं भी करते थे, यानी कंफ्यूज, पीछे भी बात हुई थी ना ABCD, ठीक है ना, कंफ्यूज, ठीक है, करते भी थे नहीं भी करते, क्यों नहीं करते थे, जैसे यानी आप ये बात कैसे कह रहे हैं कि क्यों नहीं करते थे? भाई इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की वेरिफिकेशन के लिए किसके पास भेजे थे बंदे, कि आप वेरीफाई करके बताएं कि क्या वाकई ये अल्लाह के नबी हैं कि नहीं है, किसके पास भेजे थे? क्या बुत परस्तों के पास भेजे थे, अपने जैसे यमन में कोई बुत परस्त थे उनके पास भेजे थे, या जो है वो किसी फायर वर्शिपर्स ऑफ पर्शिया है पर्शिया वालों के पास भेज देते हैं कि वहां से पूछ पूछ के बताओ, पूछवाया था कि क्या ये अल्लाह के नबी हैं कि नहीं है। किसके पास भेजे थे उन्होंने? यहूद के पास भेजे थे ना, राइट? तो यहूद के पास क्यों भेजे थे कि अल्लाह का रसूल है कि नहीं है? क्योंकि वो भी मानते थे कि अल्लाह ने किताब नाजिल करी यहूदियों के पास, यहूदियों के पास आसमानी किताबों का इल्म है, ठीक है? तो आसमानी किताबों के अगर मुनकिर होते तो यहूदियों के पास क्यों भेजते वेरिफिकेशन के लिए, है ना? तो ये क्या है? ये सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ कुछ बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ बात कर रहे हैं, कहीं कुछ बात कर रहे हैं, कहीं कुछ बात कर रहे हैं, उल्टा सीधा मिक्स एंड मैच, ठीक है ना? तो ये बात हम क्यों कर रहे हैं? अपने ग्रेबान में झांकने के लिए कि अगर हम भी इसी किस्म की सिचुएशन में है ना, इसी किस्म की कंडीशन में, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कोई बात करते हैं, कभी कोई बात करते हैं, वी आर नॉट एबल टू ज्वाइन द डॉट्स टुगेदर एंड मेक वन पिक्चर, ठीक है? तो ये किसकी अलामत है? ये शिर्क की अलामत है, ये शिर्क की अलामत है, क्योंकि इट ऑल जॉइंस बैक टू शिर्क। ये तौहीद की अलामत नहीं है, ठीक है? तो अब अल्हम्दुलिल्लाह कोई हम पे फतवा तो नहीं लगा रहा, ना मैं लगा रहा हूं, ना कोई मुफ्ती साहब लगा रहे हैं कि आप काफिर हो गए हैं, अब आप मुशरिक हो गए। नहीं, फतवा उतवा की बात यहाँ पे कोई नहीं हो रही है, लेकिन तकवा की तो बात हो रही है ना। फिक्र करनी चाहिए ना कि हम ऐसे कंफ्यूज क्यों हैं कि हम जो है वो बस तौहीद के बगैर ही जो है वो पढ़े चले जा रहे हैं मुख्तलिफ किस्म की चीजें, और समझ रहे हैं कि जी जन्नत तो रेड कार्पेट वेलकम मिलेगी और जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। हालांकि हम इंतहाई स्कैटर्ड और इंतहाई मुंतशिर और इंतहाई कंफ्यूज किस्म के लोग हैं, ठीक है? तो तौबा करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने बहुत आसान बनाया हुआ है इसका हल, बस तौबा, नादिम और शर्मिंदा होकर के अल्लाह ताला से माफी मांगने के, अल्लाह मैं क्यों अब तक रहा, मेरी गलती है और आप मुझे माफ कर दीजिए और मेरी मदद फरमा दीजिए। अब तौहीद के लिए मेरी मदद फरमा दीजिए, अब मेरी आप मदद फरमा दीजिए। मैंने माफी मांग ली आपसे, आपको भी पता है कि मैंने माफी मांगी है। अल्लाह को तो नहीं धोखा दे सकते ना कि माफी नहीं मांगी लेकिन मांग ली। अल्लाह ताला नाउज बिल्ला धोखा खा गए हमारी माफी से, अल्लाह ताला तो धोखा नहीं खाते ना माफी से, ठीक है ना? माफी मांगी है तभी अल्लाह ताला उसको कबूल करेंगे, ठीक है? तो माफी मांग ली सच्चे दिल के साथ, किसके ऊपर? शिर्क के ऊपर माफी मांग ली, डिस्ट्रैक्शन के ऊपर माफी मांग ली, इंतशार के ऊपर माफी मांग ली, और फिर अब अल्लाह ताला से मदद मांग रही है फोकस होने के ऊपर, ठीक है? कर लेना चाहिए आज, ठीक है ना? दुआएं मंगवाने का तो बड़ा शौक है लोगों को, लेकिन ये फोकस होना, ये बातें सुन करके बात समझने का शौक बहुत कम होता है, ठीक है? कोई रिवायती काम करवा लो, तौबा के कलमात पढ़ दो, दुआएं करवा लो, फलाना कर लो, ये कर लो, लेकिन बात सुननी नहीं है, समझनी नहीं है और उसके ऊपर अमल नहीं करना है, ठीक है ना? ये जो वक्त जाया कर रहे हैं, अपनी जिंदगी जाया कर रहे हैं इस तरीके से। अच्छा, आगे फरमाते हैं कि जब तुम्हारा जी चाहे, अच्छा सॉरी, कि ये है ना, मुतलक आसमानी किताबों का इनकार करते हैं, आने के साथ साथ जो है वो इकरार भी करते हैं, ऊपर से इनकार भी करते हैं। तो ये कह दीजिए उन लोगों से कि अगर बात यही है कि अल्लाह ताला ने किसी बशर पर कोई किताब नहीं भेजी, तो ये बतलाओ कि ये तौरात जिसको तुम भी मानते हो और इसी की वजह से कौम के तुम चौधरी बने बैठे हुए हो, ये किसने नाजिल करी है? उन्हीं की बात को उनके ऊपर पलट दिया और उनको ग्रिल कर रहे हैं, ठीक है? और साथ ही ये भी बतला दिया कि तुम वो टेढ़े चलने वाले लोग हो कि जिस किताब तौरात को तुम आसमानी किताब कहते हो, यानी क्रूकेट, अंग्रेजी में कहते हैं ना क्रूकेट मेंटालिटी, ठीक है ना? अजीब मिक्स किस्म की मेंटालिटी। तो ये वही फरमा रहे हैं, तुम ऐसे टेढ़े किस्म के लोग हो कि जिस किताब तौरात को तुम आसमानी किताब कहते हो और मानते हो, उसके साथ भी तुम्हारा ये मामला है कि तुमने उसको बंधी हुई किताब के बजाय मुतफर्रक औराक में लिख छोड़ा है, कंपाइन नहीं किया तुमने एक जिल्द के अंदर उसको, ठीक है? ताकि जब तुम्हारा जी चाहे किसी वर्क को दरमियान में से निकाल दो और उसके मुगमरात से इनकार कर दो, यानी जो बातें उसके अंदर वाजिब थी या मना थी, तो कह दो कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि तुमने तो छुपा दिया, अब लोग तो देख नहीं सकते, ठीक है? इसी वजह से ना इनके यहाँ जो है वो सिर्फ जो रैबाइज होते थे ना, या जो बड़े होते थे इनके, उन्हीं के पास किताब होती थी, अवाम के पास किताब ही नहीं होती थी, ठीक है ना? लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत में अब देखें हम जैसे लोग, उनके पास भी अल्लाह का कलाम पूरा का पूरा मौजूद है। बल्कि सिर्फ अल्लाह का कलाम नहीं, अगर उम्मत मोहम्मदिया को कोई फर्ज चाहे तो उस कलाम का तर्जुमा भी उसकी अपनी जुबान में मौजूद, उस कलाम की तफसीर भी उसकी अपनी जुबान में मौजूद, सब वरकों की शक्ल में यानी किताबी शक्ल में भी मौजूद और ऑनलाइन शक्ल में भी अब तो मौजूद है। तो अल्लाह ताला ने कैसे जो है वो इस उम्मत के ऊपर खुसूसी इनाम फरमाया है कि अपने कलाम को इतना आम फरमा दिया, ठीक है। और वास्ता किसको बनाया, वास्ता जो है वो हुफाज को बनाया, और वास्ता यानी इंसानों को जिन्होंने इस कुरान को हिफ्ज किया, और सिर्फ खाली हुफाज को नहीं बल्कि जिन्होंने इसको लिखा, जो कातिबीन होते थे, फिर जो पब्लिशर्स होते थे, फिर उसके बाद जो जो उलमा जिन्होंने इसके ऊपर अपनी 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 जिंदगियां लगाई, इसकी मेहनत के ऊपर तर्जुमे किए और तफसीरें लिखी, राइट, अल्लाह ताला ने इनको वास्ता बनाया, ठीक है। तो वास्तों का भी तो फिर इनकार नहीं किया जा सकता ना, और जाहिर है नबी अलैहिस्सलाम ने उसूल भी बता दिया कि जिसने वास्तों का शुक्रिया अदा नहीं किया, मन लम यशकुर नास लम यशकुर अल्लाह, तो कौन से हर इंसान का शुक्रिया अदा करना, नहीं बल्कि जो हमारे लिए वास्ता बने हैं उनका शुक्रिया अदा करना ना। ऐसे तो नहीं कि भाई गोरों की तरह चलते फिरते थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच, जिसको जो नजर आए थैंक यू वेरी मच। लम यशकुर नास का मतलब यह है कि जो इंसान नजर आए उसका तुम थैंक यू कहना शुरू कर दो, कोर्स नॉट, ये इसका मतलब नहीं है। बल्कि किन इंसानों का शुक्रिया अदा करना है, जो वास्ता बने, ठीक है ना, जो मीन्स बने हैं हम तक खैर पहुंचने के, ठीक है, चाहे वो दुनियावी खैर हो उनका भी शुक्रिया अदा करना, चाहे वो दीनी खैर हो उनका भी और ज्यादा शुक्रिया अदा करना, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला का निजाम है, और अल्लाह ताला ने अपनी दीन को ऐसे महफूज करने का बेड़ा उठाया है। अब हम क्या करते हैं, हम अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह आप हमें भी कबूल फरमा लीजिए, अल्लाह आप हमें भी वास्ता बना दीजिए, ठीक है ना, कि हम आपके दीन की हिफाजत करने का सबब बन जाएं, ठीक है। चाहे जो है वो खुद दीन पढ़ करके, दीन के हिफ्स करके और कुरान का हिफ्स करके, तफसीर को समझ करके, फिर आगे पढ़ा करके, या जो लोग ये काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करके, उनको सपोर्ट करके हम वास्ता बन जाएं इसका, बस किसी तरह अल्लाह आप हमें कबूल फरमा लीजिए, ये हमारी दुआ होनी चाहिए, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया, ये इनकी इनकी बदनीयतियां थी कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनको वास्ता नहीं बनाया, तो ये हरकतें करते थे। जैसे तौरात की वो आयात जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलामात और सिफात के मुतालिक थी उनको तुमने निकाल दिया है, ठीक है। हालांकि इनको तो पता था ना, यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, ये जो यहूद के उलमा थे, और इनमें तकरीबन सारे उलमा थे, तकरीबन यहूदी जो है ना, दे वर लाइक अ एकेडमिक क्राउड, स्पेशली जो मदीना मुनव्वरा में आके सेटल हुए थे ना, ये भी यहूदियों की भी क्रीम थे, क्रीम थे यहूदियों की, ठीक है। क्यों आए थे मदीना मुनव्वरा में, अल्लाह के आखिरी रसूल को तलाश करने के लिए आए थे, अल्लाह के आखिरी रसूल का इंतजार करने के लिए आए थे। और कैसे आए थे, अपने घर बार को छोड़ करके आए थे, हिजरत करके आए थे। तो क्या हर बंदा हिजरत कर सकता है इस मकसद के लिए, नहीं, हर बंदा हिजरत नहीं कर सकता। हर बंदा अपने घर बार को, अपने कारोबार को, अपने इलाके को, अपनी जमीन को छोड़ करके दूसरी जगह पे, बिल्कुल किसी नई जगह पे जाकर के सेटल डाउन नहीं हो सकता, सिवाय उसके जो बहुत संजीदा हो, जो बहुत संजीदा हो इस मामले में, ठीक है ना। तो मदीना मुनव्वरा में जो यहूदी शाम से आकर के सेटल हुए थे या किसी और भी जगह से आके सेटल हुए थे, ये तो एक्सेप्शनल क्राउड थी। गोया के आज के दौर में अगर आप कहें कि भाई सबसे ज्यादा जो दीनदार और सबसे ज्यादा दीन के बारे में जो संजीदा लोग हैं वो कौन है, उलमाए कराम, है ना। तो अब जो है वो आखिरी नबी की तलाश में अगर हिजरत की जरूरत पेश आ जाए, आखिरी नबी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो आ चुके हैं ना, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन इनके तो आखिरी नबी अभी तक नहीं आए, नहीं आया बल्कि अदब करने की तो कोई जरूरत भी नहीं है उसकी। इनका जो आखिरी नबी है और उनका भी जो आखिरी नबी है वो तो अभी तक नहीं आया, इनका समझ गए ना, इंशाल्लाह, ठीक है। जिसको वो आखिरी कहते हैं, वो तो अभी तक नहीं आया। ठीक है, तो आखिरी वाले का इंतजार करने के लिए अगर हिजरत की नौबत पड़ जाए तो फिर कौन हिजरत करेगा उनमें से? जो सबसे ज्यादा संजीदा होगा इस बारे में वही हिजरत करेगा ना। हर बंदा तो नहीं उठ करके जाए वो कहीं कहीं और हिजरत करके चला जाएगा। कहने का मकसद ये है कि ये जो थे ना, ये स्पेशल क्राउड था यहूदियों का, ये सारे के सारे उलमा थे। इल्ला माशाल्लाह कुछ लोग होंगे जो कि पार्ट टाइम उलमा हूं, लेकिन ज्यादातर उलमा ही थे। तो इनको पता था नबी अलैहिस्सलाम के बारे में ना, तो इनके पास तो जो है ना, वो इन सबके पास वो औराक थे तौरात के। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम को पहचानते थे अच्छी तरीके से। किसको नहीं बताते थे? इनको तो खुद पता था, यानी इनके यहूदियों को तो सबको पता था जो मदीना मुनव्वरा वाले यहूदी थे, क्योंकि वो तो मदरसा यहूदी थे, मदरसा क्राउड था यहूदियों का। ठीक है ना, तो उनको तो सबको पता था कि वाकई नबी अलैहिस्सलाम यही हैं, तो फिर किसको नहीं बताते थे? ये जो है फिर नॉन यहूदियों को ही बताते थे, यानी औस और खजरज कबीले के लोगों को, जो मदीना मुनव्वरा के बाकी लोग थे ना, जो कि थे तो अरब। ठीक है, लेकिन ये भी जो है ना, औस और खजरज कबीले वाले भी जो मदीना मुनव्वरा में सेटल्ड थे, ये भी किस लिए इधर सेटल्ड थे? ये भी यमन से हिजरत करके यहां पर आए थे, वो जो तुब्बा हुमेरी एक बादशाह था यमन का, जो कि अपने पूरे लश्कर के साथ जो है ना, वो गुजर रहा था इस इलाके से। उसके लश्कर के अंदर जो उलमाए कराम थे, तुब्बा हुमेरी यमन का बादशाह, उसके लश्कर में जो उलमाए कराम थे वो भी कौन थे? वो भी यहूदी थे, वो भी उलमाए यहूद थे। उनके पास भी तौरात मौजूद थी, और उनके पास भी तौरात की वजह से नबी अलैहिस्सलाम की सारी निशानियां मौजूद थी। जब ही वो तुब्बा हुमैरी के साथ जब यसरब के इलाके में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कितने, यानी कितना उनको इल्म था, और कितना इल्म उनका, यानी इस्तेहजार था उनको अपने इल्म का, कि जैसे ये इलाका देखा वो पहचान गए कि यार ये सारी निशानियां तो हमारी तौरात में मौजूद हैं, यही सारी निशानियां तो हमने पढ़ी हुई है कि आखिरी अल्लाह का रसूल जो है वो इसी इलाके में आएगा। तो उन्होंने बादशाह से कहा कि हम तो उस जगह पर मौजूद हैं जहां पे अल्लाह के आखिरी नबी ने आना है। तो बादशाह ने उनको इजाजत दी, उन्होंने इजाजत मांगी, बादशाह ने इजाजत दे दी कि तुम सब यहीं सेटल डाउन हो जाओ, यू डोंट नीड टू गो बैक टू यमन विद मी, यहीं सेटल डाउन हो जाओ। तो ये जो औस और खजरज के कबाइल थे, ये भी इनसे भी ज्यादा पुराने यहाँ पे सेटल डाउन हुए हुए थे। ठीक है, फिर वही हुआ कि वक्त गुजरता है, फिर बुत परस्ती जो है वो शैतान इंट्रोड्यूस करवा देता है, उन्होंने भी बुत परस्ती शुरू कर दी। ठीक है, लेकिन बाकी जो यहूद थे, जिनका नाम भी यहूद के नाम से ही मशहूर है, ठीक है, सीरत के अंदर, वो बाद में आए, शाम से आए वो, और वो फिर बुत परस्ती में मुब्तला नहीं है, क्योंकि वो अभी रिसेंटली सेटल डाउन हुए थे मदीना मुनव्वरा में। ठीक है, तो अब ये जो है ना, औस और खजरज वाले जो ओरिजिनल यहूदी थे, यानी बल्कि मजीद हिस्टोरिकली यहूदी थे, उनसे जो है ना, फिर वो नबी अलैहिस्सलाम की जो निशानियों वाली तफसीलात थी वो छुपाते थे। ठीक है, उनके पास से, यानी जो औस और खजरज वाले एंशंट यहूदीज थे, उनके पास से जो है ना, फिर ये इल्म शन सब खत्म हो गया। इतना लंबा वक्त गुजर गया उनके ऊपर बुत परस्तों के दरमियान रहते रहते, उनके पास से सारा इल्म जो है वो खत्म हो गया, लेकिन शाम की यहूदियों ने उसको रिटेन करके रखा। ठीक है, तो वो फिर मदीना मुनव्वरा में ये हरकतें किया करते थे कि औस और खजरज वालों को जो है ना, नबी अलैहिस्सलाम की निशानियां नहीं बताते थे। अल्लाह ताला की शान होती है कि अल्लाह ताला ने इन औस और खजरज वाले यहूदियों के पास तुब्बा हुमैरी बादशाह का खत जो है ना, वो महफूज फरमा दिया। वो खत उनके पास महफूज था, बाकी कोई चीज महफूज नहीं रही। ठीक है, तब नबी अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाए, तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला, जिनके घर में नबी अलैहिस्सलाम ने कयाम फरमाया, तो उन्होंने फिर वो खत जो है वो नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया, जिसमें वो तुब्बा हुमैरी नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुका था। उसने उसके अंदर लिखा कि अगर आप जब आएंगे ना, मैं आपके ऊपर अभी से ईमान लेकर के आता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या किस्मत होती है। ठीक है, तो अच्छा, इन्होंने कोई सवाल लिखा है कि आर ओनली द चिल्ड्रन ऑफ बनी इसराइल कंसिडर्ड ज्यूज और डज इट ऑल्सो इंक्लूड दोज हु बिलीव इन देयर रिलीजन? नहीं, दोज हु बिलीव इन देयर रिलीजन ऑल्सो आर कंसिडर्ड बनी इसराइल। ठीक है, तो जिन्होंने उनका इनकार कर दिया ना, फिर वो जाहिर है बायोलॉजिकली स्पीकिंग तो वो जाकर के कहीं ना कहीं हो सकता है बनी इसराइल के अंबिया से वो मिलते हैं, लेकिन अगर वो बिल्कुल यानी ऐसे नहीं है तो फिर वो उनको बनी इसराइल में शामिल नहीं किया जाता, यानी मानने वाले बिल्कुल भी नहीं है तो उनको बनी इसराइल में शामिल नहीं किया जाता। तो इस वजह से ये जो औस और खजरज के कबाइल थे ना, तो ये बनी इसराइल के अंदर शामिल नहीं कहलाएंगे। बहरहाल, ये एग्जैक्ट तफसीलात ये ऐसी नहीं है कि औस खजरज की जो यानी ऐसी हमने नहीं पढ़ी, ये तो अभी आपके साथ क्लास के अंदर ये बातें आ गई हैं, लेकिन वैसी ये तफसीलात पढ़ी नहीं है साजिश ने भी कम से कम, कि ये एग्जैक्टली जो है ना, ये बनी इसराइल ही वाले थे या जो है ये वो नसारा की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके थे और अब ये नसारा की शक्ल में थे जो कि तुब्बा हुमैरी के साथ यहाँ पर आए थे। ठीक है, तो इनमें जो है वो मिक्स एंड मैच भी हो सकता है, कि हो सकता है इनमें से किसी की लीनियत जो है वो ऊपर जाकर के बनी इसराइल से मिलती हो और किसी की लीनियत जो है वो ऊपर जाके बनी इसराइल से ना भी मिलती हो, लेकिन ये बात तो मुत्तफिकुन अलैह है कि इनके पास निशानियां मौजूद थी आखिरी नबी की, जब ही ये यसरब के अंदर सेटल हुए थे ना, इसके ऊपर तो कोई इख्तलाफ नहीं है। तो निशानियां कहां से आई? कुछ जिन्होंने ने आके इनको निशानियां तो नहीं दी थी, ठीक है ना? इनके पास निशानियां आसमानी आसमानी किताबों में से आई थी ना। बहरहाल, तो ये जो है ना, फिर नबी अलैहिस्सलाम के बारे में जो निशानियों वाली थी वो छुपाते थे, अल्लामात सिफात के मुतालिब थी, उनको तुमने निकाल दिया है। आयत के आखिरी जुमले तजालूनहु करातीस का यही मतलब है। करातीस किरपास की जमा है जिसके मानी है वरक, कागज। इसके बाद इन्हीं लोगों को खिताब करके फरमाया, वा उल्लिमतुम मा लम तअलमू अंतुम वला आबाकुम, यानी कुरान के जरिए तुम्हें तौरात और इंजील से जायद भी वो इल्म दिया गया है कि जिसकी ना तुम्हें इससे पहले खबर थी ना तुम्हारे बाप दादाओं को उससे पहले खबर थी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे उलमा जो है ना, उनमें दोनों बातें, एक तो ये कि उन्होंने एक तो कंपाइल किया, ठीक है, कौन थे हमारे उलमा जिन्होंने कंपाइल किया? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु, वो भी तो दीन के पहले उलमा कौन थे? साहब है कराम। नबी अलैहिस्सलाम जो है वो उलमा में नहीं आते, हालांकि इल्म सबसे ज्यादा नबी अलैहिस्सलाम के पास था, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के लिए क्या लफ्ज है जो आप ने खुद बताया? मुअल्लिम, मुअल्लिम, ठीक है, यानी इल्म पढ़ाने वाला। ठीक है, तो उलमा फिर सबसे पहले कौन थे? नबी अलैहिस्सलाम से इल्म हासिल करने वाले, यानी सहाबा कराम। तो उन्होंने छूटते ही, हम उर्दू में कहते हैं ना, छूटते ही पहला काम ये किया, क्या किया? कंपाइल करने का। ठीक है, वो एक बड़ी तफसील है उसमें, उमर फारूक खताना उन्होंने अबू बकर सिद्दीक खतान को कैसे परसू किया कि नहीं कंपाइल करें, कंपाइल करें। वो भी क्यों नहीं कंपाइल कर रहे थे? सिर्फ इस वजह से कि नबी अलैहिस्सलाम ने कंपाइल नहीं किया तो मैं कैसे कंपाइल कर लूं। लेकिन अल्लाह ताला ने अकल जो है ना, अकल का रास्ता बंद नहीं कर दिया इस दीन के अंदर, कि बस जो नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं किया तो वो तुम भी ना करो। भाई, अगर वो उसूल शरीयत के खिलाफ नहीं है और दीन में उसकी जरूरत महसूस हो रही है तो फिर वो करो तुम। बेशक नबी अलैहिस्सलाम ने वो काम नहीं किया, लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा। अगर वो उसूल के खिलाफ नहीं जाता, और उसूल के अंदर फिर फराइज भी दाखिल होते हैं, फराइज के खिलाफ नहीं जाता यानी अहकामात के खिलाफ नहीं जाता, फिर वो तुम्हें काम करना पड़ेगा। फिर ये बात नहीं चलेगी कि नहीं, हमें नबी अलैहिस्सलाम ने तो क्या, नहीं तो मैं क्यों करूं ये वाला काम। ठीक है ना, तो साहबा ने काम किया कंपाइल करने का, हालांकि नबी अलैहिस्सलाम ने काम नहीं किया। ठीक है, तो एक तो ये किया उन्होंने, दूसरा ये कि अब उन्होंने इल्म भी ऐसा हासिल किया जो इस उम्मत के उलमा थे कि कॉम्प्रिहेंसिव, कवर टू कवर, ठीक है ना, यानी पूरे कुरान का इल्म हासिल किया। ये नहीं कि बस किसी एक तरह का इल्म हासिल कर लिया और बस बाकी इल्म जो है ना वो अब चूंकि खुद हासिल नहीं किया, अब दूसरों से भी छुपा रहे हैं कि भाई मैंने तो हासिल किया नहीं, तो मैं दूसरों को जो है ना वो अगर सफात दिखा दूंगा तो मेरी तो जिल्लत हो जाएगी कि ये तो कुरान है और आपने तो इसका इल्म ही हासिल नहीं किया, तो चलो ऐसा करता हूँ छुपा लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने तो इसका इल्म हासिल नहीं किया तो मैं दूसरों से भी छुपा लेता हूँ, कहीं जिल्लत ना महसूस हो। नहीं, बल्कि एक तो उन्होंने ये काम किया कि पूरा इल्म हासिल किया, लेकिन इवन जिन्होंने पूरा इल्म हासिल भी नहीं किया ना, उन्होंने भी इसकी परवाह नहीं करी कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी अगर हमसे फलानी चीज पूछ ली जिसका हमें इल्म नहीं है। नहीं, बिल्कुल परवाह नहीं करी इस बात, बल्कि एक जवाब है जो कि हमारे उलमा के दरमियान मशहूर है शुरू से, क्या है भाई, जिस चीज का तुम्हें इल्म ना हो ना जवाब दे दो, ला अदरी, मुझे नहीं मालूम। अपनी तरफ से झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, कोई नया इल्म गढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, या ये बोलने की नहीं इसके बारे में तो कोई चीज नाजिल ही नहीं हुई। भाई सीधा सीधा जवाब दो, ला अदरी, मुझे नहीं मालूम। तो हमारे इस उम्मत के उलमा ने इल्म भी पूरा हासिल किया, लेकिन जो नहीं भी हासिल कर सके उन्होंने कहा भी ठीक है मैं नहीं हासिल कर सका यार, इट्स माई फॉल्ट, वाई शुड आई चेंज द रिलीजन बिकॉज ऑफ दैट, मैंने अल्लाह को जवाब देना है, मैंने ये नहीं करना, ठीक है। तो अल्लाह ताला हमें भी तौफीक अता फरमाए कि भाई इल्म हासिल करें, और अगर नहीं किसी चीज का हासिल कर सके कोशिश के बावजूद, ठीक है ना भाई, ठीक है भाई, हर एक की अपनी अपनी मजबूरी, अपनी अपनी सिचुएशन होती है, तो बोल दे यार मुझे नहीं मालूम, ठीक है। अच्छा और मतलब ये भी नहीं कि बोल दें बल्कि फिर जाके इल्म हासिल कर लें जिसका नहीं, आपको अगर मौका मिल रहा है तो उसका भी इल्म हासिल कर लें जिसका आपको इल्म नहीं था, लेकिन गलत इंफॉर्मेशन मत दें आगे जाकर। आखिर आयत में फरमाया यानी इस सवाल का जवाब के जब अल्लाह ताला ने कोई किताब ही नहीं भेजी तो तौरात किसने नाजिल की, तो वो क्या देंगे ये जवाब, आप ही फरमा दीजिए, अल्लाह ताला ने ही नाजिल फरमाई। और जब उन पर हुज्जत तमाम हो गई, ठीक है ना, कितनी दफा बात हो चुकी पिछली क्लासेस के अंदर कि हुज्जत तमाम करनी है, ठीक है ना, हुज्जत तमाम करना इज इम्पॉर्टेंट। अल्लाह ताला जब ये काम कर रहे होते हैं और अल्लाह ताला ने अपने नबी अलैहिस्सलाम के जरिए से ये काम भी करवाया और फिर उम्मत के उलमा ने ये काम किया, हुज्जत तमाम करना, हुज्जत तमाम करना, भाई हम क्यों नहीं करते वाला काम, ठीक है, तो हुज्जत तमाम करना, उसके लिए जाहिर है कैसे करेंगे जब अपने खुद ही जहन क्लियर नहीं होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, क्लियर नहीं होंगे तो अगले बंदे को कैसे क्लियर करेंगे और कैसे हुज्जत तमाम करेंगे, ठीक है। तो फरमाया कि और जब उन पर हुज्जत तमाम हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अब काम खत्म हो गया, यानी अब काम मुकम्मल हो गया, अब वो जिस लहव व लाब में खोए हैं उनको उनके हाल पर छोड़ दीजिए। जर का जो लफ्ज होता है पीछे भी आया ना कि लीव देम बिहाइंड, यानी एक एक नागवारी के एहसास के साथ उनको उनके छोड़ दीजिए, बस, ठीक है। इन पर अल्लाह ताला की तरफ नाजिल होने वाली किताबों के बारे में उन पर हुज्जत करने के बाद तीसरी आयत में इरशाद फरमाया वहादा किताबुन अनज़लनाहु मुबारकुन मुसद्दिकुल लज़ी बैना यदैही वलितुनज़िरा उम्मल कुरा व मन हौला, यानी जिस तरह तौरात का हक तआला की तरफ से नाजिल होना उन्हें भी तस्लीम है, इसी तरह ये कुरान भी हमने नाजिल किया है और उसके हक व सिद्क होने के वास्ते उनके लिए ये शहादत काफी है कि कुरान इन सब चीजों की तस्दीक करता है, उन सब चीजों की तस्दीक करता है जो तौरात और इंजील में नाजिल हुई हैं, और तौरात और इंजील के बाद उसके नाजिल करने की जरूरत इसलिए हुई, ये दोनों किताबें तो बनी इसराइल के लिए भेजी गई थीं, उनकी दूसरी शाख बनी इस्माइल जो अरब कहलाते हैं और उम्मुल कुरा यानी मक्का मुकर्रमा और उसके इर्द गिर्द बसते हैं, उनकी हिदायत के लिए कोई खास पैगंबर और किताब अब तक ना आई थी, ठीक है, यानी ये फतरत वही का जमाना कहलाता है कि जिसमें कि इस इलाके के अंदर ना कोई पैगंबर और कोई किताब जो है वो डायरेक्टली नहीं आए थे, अगरचे के इन तक जो है वो दूसरे पैगंबरों की जो तालीमात थी वो बिलवास्ता पहुंचती रहती थी, ठीक है, जैसे उलमाए बनी इसराइल के वास्ते पहुंचती थी, या जो यानी शाम के वालों के वास्ते तो पहुंचती थी, या अफ्रीका वालों के वास्ते से पहुंचती थी, क्योंकि अफ्रीका में भी ईसाई मौजूद थे जो ईसा अलैहि सलाम पर ईमान लाते थे, और जो है वो यहूद सॉरी यमन में भी मौजूद थे, बहरीन में भी मौजूद थे, ठीक है ना, तो वहां तक तो उलमा भी मौजूद थे और कुछ उलमा जो है वो यहां पर भी आते रहते थे, ठीक है। तो लेकिन बाकायदा एक नबी का आना वो अल्लाह ताला ने अपनी खास हकमत की वजह से इन लोगों के लिए रोक करके रखा हुआ था। अब ये कुरान उनके लिए खुसूसन और पूरे आलम के लिए उमूमन नाजिल किया गया है, यानी जिसके ऊपर बराह रास्त नाजिल होता है ना, तो उसको फिर खुसूसन ही कहा जाता है और बाकियों को उमूमन कहा जाता है। मक्का मुअज्जमा को कुरान करीम ने उम्मुल कुरा फरमाया, यानी तमाम शहरों और बस्तियों की जड़ और बुनियाद, ठीक है। जैसे माँ जो होती है वो अपनी औलाद के लिए बुनियाद की हैसियत रखती है, उसी तरह से ये शहरों के लिए बुनियाद की हैसियत रखता है। इसकी वजह यह है कि तारीखी रिवायात के मुताबिक इब्तदाए आफरीनश में, यानी जब जो है वो सारी कायनात की इब्तिदा हो रही थी, तो उसमें पैदाइश जमीन की इब्तिदा यहीं से हुई है, ठीक है। यानी जैसे कि वही तारीखी रिवायात, यानी कोई बाकायदा सही हदीस और ऐसी नहीं है, लेकिन उन रिवायात से पता चलता है जो कि उलमाए बनी इसराइल से होकर के मुसलमानों तक पहुंची, कि यहाँ पर जमीन जो है ना वो अल्लाह ताला ने जो बनाई, तो पहले एक छोटा सा टुकड़ा जहां पे पानी का बुलबुला, ठीक है, एक पानी का बुलबुला जो है ना वो फूटा, ये वो जगह है जहां पे काबतुल्ला है, और यहां से ये जमीन जो है वो फैलती गई फैलती गई फैलती गई, बिल्कुल जिस तरीके से इसको समझने के लिए अगर आप दूध के अंदर यीस्ट डालते हैं, यीस्ट, ठीक है, तो कैसा होता है कि शुरू में तो वो यीस्ट का जो टुकड़ा आपने डाला है वो बहुत छोटा सा होता है ना, लेकिन फिर वो यीस्ट फैलता है, ठीक है ना। हाँ, फिर वो फैलता है, यानी यीस्ट क्या होता है, यीस्ट कहेंगे, यीस्ट बोले बैक्टीरिया होता है ना, अब वो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होते हैं मल्टीप्लाई होते हैं, और वो फिर पूरा का पूरा दूध जो है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना, या कुछ और अगर गड़बड़ हो जाते फिर वो फट जाता है, हम कहते हैं दूध फट गया, है ना, पूरा दूध फट गया। तो जिस तरह से ये फैलता 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 फिर ये एक जब अलग चीज बन जाती है ना, उसी तरह से ये जो जगह है ये फैली 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 हत्ता कि पूरी की पूरी जमीन बन गई, ठीक है। वो खुद से नहीं बनी, अल्लाह ताला बनवाते रहे बनवाते रहे बनवाते रहे बनवाते रहे, वो बनते गए, पूरी बन गई बिलाखिर, ठीक है। तो एक तो ये कि ये जमीन भी पानी से बनाई, बल्कि अल्लाह ताला ने अपने कुरान मजीद में एक एक ऐसी ऐसा जो है ना वो छोटी सी आयत, ठीक है, जिसमें बस क्या बात है अल्लाह ताला की, वजअलना मिनल माई कुल्ल शय हई, ठीक है, हमने जो हयात दी ना, हयात जो पैदा फरमाई है, और हयात तो असल में हर चीज में है, सिर्फ हैवानात में हयात नहीं है, वो तो सबसे एडवांस्ड फॉर्म ऑफ हयात है, बल्कि नबातात में भी हयात है, जमादात में भी हयात है, तो गोया के जो भी अल्लाह की मखलूक है वो सारी की सारी जिंदा मखलूक ही है, बस जिंदगी के लेवल्स डिफरेंट डिफरेंट है, एडवांस कम एडवांस उससे भी कम एडवांस, ठीक है। तो अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं वजअलना मिनल माई, हमने पानी से बनाई हर चीज जो कि जिंदा है, हर चीज, गोया के हर चीज ही मुराद है आप, ठीक है, पानी से बनाई। तो बिल्कुल ऐसे ही जब बाकी सारी चीजें पानी से बनाई, तो फिर ये जो दुनिया है इसने क्या कसूर किया था, ये पानी से नहीं बनी, ये दुनिया भी पानी से बनी, ठीक है, और दुनिया में रहने वाले इंसानों का जो जिस्म है ना वो भी तो दुनिया की ही चीजों से बनता है, तो हमारा जिस्म भी पानी से बना। और इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं अफला युमिनून, इतना बड़ा दावा क्या कोई दूसरा कर सकता है सिवाय उसके जिसको बनाने वाले ने ये बात बताई हो, अफला युमिनून, तुम अभी भी उसको मेरा रसूल नहीं मानोगे, अफला युमिनून का क्या मतलब है, क्या तुम अब भी ईमान नहीं लाते, क्या मतलब अब भी ईमान नहीं लाते, क्या तुम अब भी इस शख्स को इस कायनात के खालिक का रसूल तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हो, इतनी बड़ी बात उसने कही, हर चीज पानी से तख्लीक हुई है, ठीक है, अभी भी तुम बात नहीं मानते हो। अब तो तुम्हारी मॉडर्न साइंस सो कॉल्ड, ठीक है, यार मुकदमा जो तारी की सारी मॉडर्न साइंस कहलाती है उसने भी बात प्रूफ कर दी कि भाई जिंदगी के लिए पानी जो है ना ये है असल चीज, अगर पानी है तो जिंदगी है, पानी नहीं है तो कोई जिंदगी नहीं, ठीक है। ये एक आयत जो है ना, वो इन सारे झूठे फरेबी साइंसदान जितने हैं ना, जो कि इतना साइंस साइंस करते हैं, इनकी जो है ना कली खोलने के लिए ये एक आयत भी काफी है। क्यों ईमान लेकर के आते हो खुद जो है वो, यानी वही बात यहूद वाली बात, मानते भी हो नहीं भी मानते हो, वही साइंसदानों वाले भी यही बात है। डिस्ट्रैक्टेड है ना, मुशरिक है ना, काफिर है ना, तो डिस्ट्रैक्टेड होंगे, डिस्ट्रैक्टेड होंगे तो कंफ्यूज होंगे, कंफ्यूज होंगे तो फिर उल्टी सीधी बातें करेंगे, ठीक है ना। तो यही इनका भी मसला है, इन साइंसदानों का भी, तो मानते भी हैं कि हाँ पानी से, और लेकिन और ये भी मानते हैं कि हाँ भाई 1400 साल से ये किताब तब्दील नहीं हुई, ये 1400 साल पहले जो है वो नाजुल हुई थी, और उस वक्त से जो है वो प्रिजर्व मौजूद है, लेकिन फिर भी जो है ना वो इकरार नहीं करते, सबमिट नहीं करते अपने आप को जिद की वजह से खाली, ठीक है। तो फरमाया कि उम्मुल कुरा के साथ वो मन हौलहा भी फरमाया, यानी मक्का मुकरमा के तमाम अतराफ जिसमें पूरा आलम मशरक व मगरब और जनूब व शुमाल दाखिल है, ठीक है, सभी इसके अंदर शामिल हैं। लेकिन मक्का मुकरमा का जिक्र क्यों किया, जैसे पीछे क्लास में बात हुई थी, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ठीक है ना, सबसे पहले जो है ना वो अपने ऊपर मेहनत करनी है, फिर अपने बराबर वालों के ऊपर मेहनत करनी है, अपने साथ में रहने वालों के ऊपर मेहनत करनी है, फिर करनी है, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा जो है वो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ता चला जाएगा। अल्लाह ताला जैसे जैसे बढ़ाते हैं वैसे वैसे मेहनत करते रहो, बाहर से शुरू ना करो मेहनत करना, अंदर से शुरू करो मेहनत करना, ठीक है। ये है अल्लाह का निजाम, और इसी को सुन्नत भी कहा जाता है। आयत के आखिर में इरशाद फरमाया कि वल्लज़ीना युमिनून बिल आखिरति युमिनून बिही वहुम अला सलातिहिम युहाफिज़ून, यानी जो लोग आखिरत पर ईमान रखते हैं वो कुरान पर भी ईमान लाते हैं और अपनी नमाजों की पाबंदी करते हैं। इसी में यहूद और मुशरिकीन की एक मुशतरक बीमारी पर तंबीह की गई है कि ये बेफिक्री कि जिसको चाहा माना, जिसको चाहा रद्द कर दिया और इसके खिलाफ महाज बना दिया, ये इस मर्ज का असर है कि वो आखिरत पर ईमान नहीं रखते। जिस शख्स को आखिरत और यौमुल हिसाब पर ईमान होगा, उसको खौफ खुदा जरूर इस तरफ मुतवज्जह करेगा कि दलायल में गौर करे और हक बात को कबूल करने में आबाई रसूम जाहिलियत की परवाह ना करे, ठीक है। यानी जिसको मरने के बाद वाली जिंदगी की फिक्र होगी ना कि क्या बनेगा मेरा, ठीक है, हमें तो फिक्र होती है ना, जब कोई मर जाता है ना, बीवी का शौहर मर जाता है ना, तो वो क्या कहती है, क्या बनेगा मेरा, ठीक है ना, ये नहीं उसको फिक्र होती क्या बनेगा मेरे शौहर का, वो तो मर गया, अब जो है वो कब्र में जा रहा है, हिसाब किताब होगा उसका, क्या बनेगा, नहीं, क्या बनेगा मेरा, ठीक है। तो वो क्या बनेगा मेरा जो है उसका ताल्लुक किस चीज के साथ, दुनियावी जिंदगी के साथ, मेरा क्या बनेगा, मैं कैसे खाऊंगी, मैं कैसे घर का निजाम चलाऊंगी, मैं कैसे जो है वो बिल्स पे करूंगी, मैं कैसे जो है वो सारा का सारा जो है ना वो हर चीज करूंगी, ठीक है, तो मेरा क्या बनेगा, मेरा क्या बनेगा भाई, ये मेरा क्या बनेगा जो है वो इसकी फिक्र नहीं है कि मरने के बाद तुम्हारा क्या बनेगा, इसलिए कि आखिरत की जिंदगी जो है वो अहम नहीं है, शौहर मर गया ना उसकी आखिरत की फिक्र, मैं मर जाऊंगी ना मेरी आखिरत की फिक्र, सारी फिक्र क्या दुनिया की। ऐसा शख्स जो होता है ना, फिर वो कुरान की बात उससे कोई कहता है, दलाइल भी देता है, वो कहता है यार आई एम टू बिजी, मेरे पास टाइम नहीं है इसका, ठीक है ना, मेरे पास रियल इश्यूज हैं, रियल इश्यूज, क्या रियल इश्यूज, दुनिया वाले इश्यूज, ठीक है ना, मुझे तो अभी जो है वो खाना है, कमाना है, और जो है वो ग्रेड्स लेकर के आने हैं, और ये करना है और वो करना है, ये मेरे रियल इश्यूज हैं, मरने के बाद थोड़ी है रियल इश्यूज, तो वो फिर ऐसा एटीट्यूड होता है उसका ना, तो ऐसा में अगर कर रहे हैं तो नहीं करना चाहिए, और अगर अल्हम्दुलिल्लाह में से निकलने की तौफीक हुई है तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और अगर गौर किया जाए तो आखिरत से बेफिक्री ही उम्मुल अमराज, कुफ्र और शिर्क भी इसी का नतीजा होता है, और सारे गुनाह और मासी भी आखिरत पर यकीन रखने वाले से अगर कभी कोई गलती और गुनाह सरजद भी हो जाता है तो उसका दिल तड़प उठता है। तो शुरू में जो है ना ये एहसास होना ना, ये एहसास फिर आगे के दरवाजे खोलता है कि भाई मुझे ना अपनी मरने की बाद वाली जिंदगी के लिए कुछ करना है, अभी पता नहीं है क्या करना है, ये नहीं पता आपको, लेकिन फिक्र है, तो फिक्र है तो अब जब कोई आके बता रहा है कि भाई मरने की बात की जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए ये करना चाहिए और ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, तो फिर ये बंदा जिसको फिक्र पड़ी हुई है तो फिर उसे कहता है कि भाई आप ये जो बात कह रहे हैं आपकी क्या दलील है कि आप सही बात कह रहे हैं। तो अब वो दलील जवाब जवाब में दलील बताता है, तो ये गौर से सुनता है कि कहता है हाँ, मतलब उसकी बात गौर से सुनता है, हाँ भाई इसकी दलील वाकई सही दलील है कि नहीं है, अगर सही है तो फिर मैं इसकी बात मानूंगा, अगर नहीं सही है तो फिर मैं इसकी बात नहीं मानूंगा। ठीक है, तो शुरू में तो उसको कुछ नहीं पता था ना, लेकिन जब ये मुतवज्जे हुआ, दलील को सुना, दलील इसको नाकाबिले तरदीद लगी, तो इसने उसकी बात मजीद सुनी, अब उसको पता चल गया कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना चाहिए आखिरत को काम में कामयाबी के लिए, एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। क्या मतलब, ये जो तफसीली इल्म होता है ये शुरू में नहीं हासिल होता, ये शुरू में मौजूद नहीं होता, ये बाद में मिलता है। ठीक है, शुरू में क्या चीज होती है, एहसास, जरूरत का एहसास। ठीक है, जिसके पास शुरू में ये जरूरत का एहसास ना हुआ तो उसको फिर ये तफसीली इल्म मिलेगा ही नहीं, क्योंकि तो वो तो बात सुनेगा ही नहीं, दलाइल में गौर करेगा ही नहीं। यही बात कल रात भी हो रही थी, यही एग्जैक्टली बात जो है वो कल रात हजरत शेख हबीबुल्लाह साहब ने अपने बयान में भी एग्जैक्टली यही बात फरमाई थी। ठीक है, कि जिसकी इब्तिदा अच्छी होती है ना उसी की इंतहा भी अच्छी होती है, जिसकी इब्तिदा अच्छी होती है उसी की इंतहा भी अच्छी होती है। यानी इब्तिदा में जिसको एहसास होता है, फिक्र होती है ना, उसी की फिर इंतहा अच्छी होती है। यानी अब उसको जो है वो अल्लाह ताला मुशाहिदा करवाते हैं क्या सच है, क्या गलत है, क्या फायदामंद है, क्या नुकसानदेह। ठीक है ना, तो वही तो बात है, वो तसव्वुफ के कॉन्टेक्स्ट में सारी बातें कर रहे थे। ठीक है, हम यहां पर जो है वो तफसीर के कॉन्टेक्स्ट में सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन है बात वही। ठीक है, जिसको खुदा तसव्वुफ के कॉन्टेक्स्ट में जो बात कर रहे थे वो ये थे कि भाई जिसको शुरू में एहसास होता है ना कि यार मुझे अपने रब को राजी करना है, ठीक है, उसकी इब्तिदा अच्छी हो गई। जब उसको ये रब को राजी करने की फिक्र थी, अब जो है उसने मुजाहिदा किया, उसने जो है वो मशाइख के सामने अपने आप को सुपुर्द किया, उसने उनसे सीखा, उसने उनकी बात मानी, फिर जा करके अल्लाह ताला ने उसके ऊपर हकायक की तफसीलात खोल दी। ठीक है ना, अब वो जो है वो मुशाहिदे की जिंदगी गुजार रहा है, यानी अब उसको चीजें नजर आ रही हैं, हकीकत नजर आ रही है, सब आसान हो गया उसके लिए। लेकिन जिसकी शुरू में ही नीयत खराब थी, राइट, उस शुरू में उसकी नीयत भी खराब थी, उसको इन सब चीजों की तौफीक ही नहीं होती। ठीक है, तो उसूल नहीं बदलते हैं। क्या लिखा है उन्होंने, दाई का काम है ये एहसास पैदा करना, एहसास पैदा करने की कोशिश करना दाई का ये काम। ठीक है, पैदा कर देना तो ये तो फिर अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखा हुआ है, जिसको हिदायत दे देना भी कहते हैं, पैदा करने की कोशिश करना ये दाई का काम है। जो फरमाया कि आखिरत पर यकीन रखने वाले से अगर कभी कोई गलती और गुनाह और गुनाह सरदर्द भी हो जाता है तो उसका दिल तड़प उठता है, बिलआखिर तौबा करके आगे के लिए गुनाह से बचने का वो अजम करता है, और दर हकीकत खौफ खुदा और फिक्र आखिरत ही वो चीज है जो इंसान को इंसान बनाती है और जराइम से बाज रखती है। इसीलिए कुरान करीम की कोई सूरत बल्कि कोई रुकू भी शायद इससे खाली नहीं। यानी एक दावा दत्त कर रहे हैं तो शायद का लफ्ज भी लगा रहे हैं कि कोई सूरत तो डेफिनेटली इससे खाली नहीं है, हर सूरत में आखिरत का कोई ना कोई बिला वास्ता या बिल वास्ता हो ही जाएगा, लेकिन कोई आयत भी शायद इससे खाली है कि जिसमें फिक्र आखिरत की तरफ मुतवज्जे ना किया गया हो। अल्लाहुम्मा अजअल जुमलता हुमू, ये मैं देख नहीं सका, यानी ये जो जुमला है ना अल्लाह ताला उसको हम्मन वाहिदन हम्मल आखिरा, ठीक है, इस यानी आखिरत की जो फिक्र है इसको हमारी वाहिद फिक्र बना दे, वाहिद फिक्र बना दे, आखिरत की फिक्र को अल्लाह ताला हमारी वाहिद फिक्र बना दे, तो फिर बाकी सारी फिक्रें जो है ना, फिर वो हीच हो जाएंगी और वो हम उन बेहुदा किस्म की फिक्रों से बाहर निकल आए। ठीक है, कल भी बात हो रही है ना ओसीडी, है ना, वो साइकियाट्रिक मसाइल जो है ना ओसीडी, तो ये ओसीडी भी तो फिक्रें ही है ना, और दूसरी भी साइकोलॉजिकल फिक्रें होती हैं, तो इन फिक्रों की भी जो है ना वो कॉज आमतौर पर यही बनती है कि बस ये आपकी अल्लाह की तरफ कोई फिक्र है नहीं, आखिरत की तरफ कोई फिक्र है नहीं, आप जो है ना फिर उल्टी सीधी फिक्रों के अंदर अल्लाह ताला ने आपको फंसा दिया है। नीयत के बारे में रहनुमाई फरमाएं और तौबा के बारे में थोड़ी रहनुमाई करें। गुनाहों के ऊपर नादम और शर्मिंदा होना जो है ना ये तौबा होती है, और नीयत जो है वो अल्लाह की रजा और आखिरत की जजा होनी चाहिए। इतनी थोड़े वक्त में तो इतनी ही रहनुमाई हो सकती है, बस ये भी वैसे काफी है। कहते हैं ना अकलमंद के लिए इशारा काफी है, और जिसने अपनी अकल को इस्तेमाल नहीं करने की कसम खाई हुई होती है ना, उसके सामने आप जिद की जिद भी उंडेल देना, उसको कुछ समझ में नहीं आएगी। ठीक है ना, लेकिन अकलमंद यानी जो अकल को इस्तेमाल करने की नियत रखता है ना, उसके लिए इशारा काफी हो जाता है। हमारे हजरत तो यही फरमाया करते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी इसी के ऊपर यकीन भी है और मुशाहिदा भी यही है। अच्छा, तफसीर की क्लास से फायदा हुआ कि आखिरत की बहुत फिक्र हो गई, कुछ काम करने से पहले मरने के बाद की जिंदगी याद आ जाती है, मौत से तो इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल जी, कौन कर सकता है मौत से इनकार। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो नबी अलैहिस्सलाम के वास्ते से अल्लाह ताला ने सिलसिला शुरू करवाया, यतलु अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुम अलकिताब वल हिकमा, ठीक है ना, ये नबी अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने काम शुरू करवाया ना इस उम्मत के अंदर, यही काम जो है फिर अल्लाह ताला ने सहाबा से लिया, फिर मशाइख से लिया, और हम जो है वो उनकी जूतियां सीधी करते करते अल्लाह ताला ने कुछ तौफीक अता फरमा दी। कबूलियत का नहीं पता, तौफीक तो करने की तो अता फरमा दी, कर रहे हैं ना, ऐसी को थोड़ी कर रहे हैं बगैर अल्लाह की तौफीक के, अल्लाह की तौफीक से कर रहे हैं, ये तो नजर आ रहा है कि कर रहे हैं, अल्लाह की तौफीक मिली है तो कर रही हैं, लेकिन कबूलियत का नहीं पता, कर रहे हैं कबूल भी होगा कि नहीं, अगर कबूल हो गया तो वारी वारे वारी न्यारे, नहीं हुआ फिर करना भी सिफर हो जाएगा। अल्लाह ताला से इसी वजह से उम्मीद भी रखनी चाहिए कि कबूल फरमा लेंगे, लेकिन खौफ भी जो है ना वो भी कभी भी दूर नहीं होना चाहिए। तौबा और बैत के कलमात पढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा आजकल प्रेशर है, तो तौबा के कलमात पढ़ लीजिए, दिल के अंदर ये नियत कर लीजिए कि जो भी गलतियां कोताहियां हमसे हो गई हैं, अल्लाह ताला हम उन सब के ऊपर नादम और शर्मिंदा हैं, हुज्जत नहीं बनाते, बहस नहीं करेंगे किसी से, हम नादिम हैं, शर्मिंदा हैं, और आपसे माफी मांगते हैं, ठीक है, और तौबा करते हैं। ठीक है, इस नियत के साथ इन कलमात की जो है वो साजिश पीछे पीछे पढ़ लीजिए। कलमात क्या है? वही कलमा तैयबा, वही ईमान मुफस्सल, वही ईमान मुजमल, ठीक है, और वही इस्तगफार, कोई नई चीज नहीं है सब, ठीक है, बस हम अब गोया कि एक रजिस्टर करवा दें अपनी जुबान से इन कलमात को अदा करके, जो नामे अमाल लिखने वाले फरिश्ते हैं ना, बस उनको हमने सुनवाना है ताकि वो नोट डाउन कर लें, एक चीज आ जाए हमारे नामे अमाल के अंदर। ठीक है, तो इस नियत के साथ, इस इरादे के साथ, तौबा कलमात को अपने जुबान से अदा भी कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आमनतु बिल्लाही व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल कदर खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासी बाद الموت आमनतु बिल्लाही कमा हुआ बिअस्माइही वसिफातिही वकबिलतु जमीअ अहकामिही इकरारुम बिल्लिसानी वतस्दीकुम बिल्कल्ब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु وأشهد أن محمدا عبده ورسوله استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. یہ تو وہی کلمات ہیں، ان کو ہم نے پڑھ دیا. یقیناً اللہ تعالیٰ کے وعدے اور اللہ تعالیٰ کے کلام کے مطابق اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے اس کو لکھ لیا، وہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہمیں ثابت قدم رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے اوپر یعنی اسی توبہ کی حالت میں یعنی گناہوں پر ندامت اور ایمان کی حالت میں، کیونکہ توبہ کے بعد جو ہے نا پھر ایمان جو ہے یہ آٹومیٹک اس کا رزلٹ ہوتا ہے، کیونکہ ایمان کی تجدید توبہ کے ساتھ ہی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ ہمیں موت عطا فرمائے. 2 منٹ لے کر کے ہم تھوڑی سی اجتماعی دعا بھی کر لیتے ہیں. سبحان ربی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما. اے کریم آقا، ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، ہمارے اے روح کی پردہ پوشی فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ، ہم چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا. اے اللہ، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما، حاسدین کی حسد سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، شر پسندوں کے شر سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، عافیت کا معاملہ فرما، عفو و درگزر کا معاملہ فرما. اے اللہ، نرمی کا معاملہ فرما. اے اللہ، ہدایت کا معاملہ فرما، قبولیت کا معاملہ فرما. اے اللہ، آپ کی توفیق سے ہم آپ کے قرآن کی نسبت سے یہاں جڑ کے بیٹھے. اے اللہ، اس بیٹھنے کو قبول فرما دیجئے. اے اللہ، اس وقت کو اے اللہ علم نافع کا سبب کے طور پر اے اللہ ہم سب سے قبول فرما دیجئے. ہمیں علم نافع نصیب فرما دیجئے، عمل صالح نصیب فرما دیجئے. اے اللہ، اخلاص کی نعمت ہمیں عطا فرما دیجئے. اے اللہ، اپنی رحمت سے ان سب کو ہم سے قبول بھی فرما لیجئے. اے اللہ، رمضان المبارک کے بابرکت لمحات ہیں، اے اللہ آپ کی توفیق ہی سے ہمیں ملے. اے اللہ، آپ ہی کی توفیق سے ہم نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی. اے اللہ، رات کا قیام کیا، تراویح پڑھی. اے اللہ، تلاوتیں کری. اے اللہ، ہمارے اپنے بس میں تو کچھ بھی نہ تھا، اے اللہ آپ نے اتنی مہربانی فرما دی. اے اللہ، لیکن ہم تو بندے ہی ہیں. اے اللہ، ہم تو سراسر گندے ہی ہیں. اے اللہ، ساتھ ساتھ اپنے نفس کی شیطانیت کی وجہ سے اے اللہ کوئی نہ کوئی گناہ، کوئی نہ کوئی کمزوری، کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہم کرتے ہی رہتے ہیں. اے اللہ، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دیجئے، وہ یقیناً ہماری اپنی طرف سے تھی، اور جو بھی خیر ہے وہ ساری کی ساری آپ کی طرف سے ہے. اے اللہ، کیونکہ آپ ہی حسین ہیں. اے اللہ، آپ ہی خیر کا مجموعہ ہے. اے اللہ، آپ ہی صحیح معنوں میں محبت کرنے کے قابل ہیں. اے اللہ، آپ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے. اے اللہ، ہماری عبادات کو قبول فرما دیجئے. اے اللہ، جو باقی ماندہ رمضان المبارک ہے، اے اللہ اس کے اندر بھی سنتوں کے مطابق، چاہے ظاہری سنتیں ہوں یا باطنی سنتیں ہوں، اے اللہ ہر قسم کی سنتوں کے مطابق باقی ایام کو بھی اور باقی راتوں کو بھی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ، ہمیں عبادت کا شوق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ، ہمیں بھی سجدوں کا سرور نصیب فرما دیجئے. اے اللہ، رات کے آخری پہر میں اٹھ کر تہجد کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ، مناجات کی لذت عطا فرما دیجئے. اے اللہ، ہمیں بھی توحید حقیقی کی حلاوت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ، ہم جو بھی عمل کریں، اے اللہ جو فرائض کا کی قبیل سے عمل ہو، یا نوافل کی قبیل سے عمل ہو، یا اے اللہ معاملات کی قبیل سے عمل ہو، یا اے اللہ معاشرت کی قبیل سے عمل ہو، اے اللہ ان سب کے اندر ہمارا دھیان اپنی طرف متوجہ فرما دیجئے، اپنی طرف بنا دیجئے. اے اللہ، آپ کے دھیان کے بغیر، اے اللہ हम कोई भी अमल नहीं करना चाहते, अल्लाह हम अपनी जिंदगी को जाया नहीं करना चाहते आपके इस एहसास के बगैर कुछ भी करके। अल्लाह हमें ऐसा एहसास अता फरमा दीजिए, अल्लाह अपना ध्यान अता फरमा दीजिए, अपना इस्तेजार अता फरमा दीजिए, अल्लाह अपनी मोहब्बत शदीदा अता फरमा दीजिए, अल्लाह हमें भी ईमान की हलावत अता फरमा दीजिए, अल्लाह ईमान वालों की उस सफ में हम सबको शामिल फरमा दीजिए, हमारे अहलो आयाल को शामिल फरमा दीजिए, जिसके बारे में आपने अपने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया है, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बल लिल्लाह। आपके रास्ते की जो भी रुकावटें हैं अल्लाह, जिस किस्म की जाहिरी हैं या बातिनी हैं या हमारा अपना नफ्स रुकावट बना है अल्लाह, उन तमाम रुकावटों को अपनी रहमत की निगाह डाल करके अल्लाह हमारे रास्ते से हटा दीजिए। अल्लाह हमें बाकी मानदा जिंदगी को पिछली जिंदगी से बेहतर बनाने की तौफीक अता फरमा दीजिए अल्लाह, अपनी जिंदगी में भी, अपने घराने में भी, और अल्लाह अपने जानने वाले दोस्त अहबाब में भी अपने दीन की मेहनत करने की हमें तौफीक अता फरमा दीजिए अल्लाह। जो हमारे अजीज वकारिब दोस्त रिश्तेदार फौत हो चुके अल्लाह, खुसूसन हमारे हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह, उनको और हमारे वालिदैन को अल्लाह अपने जवार रहमत में बेहतर से बेहतर जगह अता फरमा दीजिए अल्लाह, हमें उन सब के लिए सदका जारिया बनने की तौफीक अता फरमा दीजिए अल्लाह, हमारे छोटों को हमारे लिए सदका जारिया बनने की तौफीक अता फरमा दीजिए अल्लाह, जो मांगना चाहिए तो नहीं मांग सके अल्लाह, अपने गैबी खजानों से हमें वो भी अता फरमा दीजिए, हमारी जरूरियात से यकीनन आप हमसे भी ज्यादा वाकिफ हैं अल्लाह, हमारी तमाम जरूरियात को पूरा फरमा दीजिए अल्लाह, मकसद जिंदगी के लिए हमें यकसुई अता फरमा दीजिए अल्लाह, आखिरत को आपकी रजा को अपना मकसद बनाने की तौफीक अता फरमा दीजिए अल्लाह, हमारी तमाम गुनाहों से हमें पीछा छुड़ाने के लिए अल्लाह जिस भी वसाइल की, जिस भी सबक की जरूरत है अल्लाह, अपने गैबी खजानों से हमें वो असबाब अता फरमा दीजिए, नेक बनना आसान फरमा दीजिए अल्लाह, दीन की मोहब्बत और कुफर और काफिरी की नफरत हमारे दिलों के अंदर पैदा फरमा दीजिए। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नका अंत तवाबुर रहीम, व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सैयदना मुहम्मद वाला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम।